दिन भर 10 दिसंबर दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा।
उन्होंने ये कहा है कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूँ इफेक्टिव इमीडिएटली।
लंदन के कोर्ट ने दिया कारोबारी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का आदेश।
जज ने अनाउंस किया कि वो उनको एक्सट्राडाइट करेंगे, उसका ये मतलब नहीं है कि विजय माल्या आज ही इंडिया आएंगे।
और संसद के शीत सत्र से पहले सत्ताधारी एनडीए को झटका, गठबंधन से बाहर निकली उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी।
अभी से हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी।
चर्चा एडिलेड में भारत की जीत की और आपके पत्र भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। उर्जित पटेल ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी बयान में उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताए हैं। पिछले कुछ समय से मोदी सरकार और गवर्नर उर्जित पटेल के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही थीं। ऐसे आरोप भी थे कि सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में हस्तक्षेप की कोशिश कर रही है। भारतीय कारोबारी विजय माल्या का प्रत्यर्पण ब्रिटेन के कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि विजय माल्या को तुरंत लंदन से भारत लाया जा सकेगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए विजय माल्या के पास 14 दिनों का समय होगा। अगर संबंधित व्यक्ति अपील नहीं करता और विदेश मंत्री अदालत के फैसले से सहमत होते हैं तो वह व्यक्ति 28 दिनों के भीतर प्रत्यर्पित किया जाएगा। विजय माल्या भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रुपए के कर्जदार हैं और मार्च 2016 से वह लंदन में हैं। भारत सरकार उनका पासपोर्ट रद्द कर चुकी है और उन्हें भारत लाने की कोशिशें कर रही है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों महीने भर तक चले हिंसक येलो वेस्ट आंदोलन के बाद दोबारा अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। देश के नाम अपने संबोधन से पहले उन्होंने ट्रेड यूनियन के नेताओं और व्यापार जगत की हस्तियों से मुलाकातें की। मैक्रों के प्रवक्ता ने कहा कि देश के नाम संबोधन में राष्ट्रपति बड़े ऐलान कर सकते हैं। उनकी सरकार डीजल पेट्रोल के आयात शुल्क पर प्रस्तावित बढ़ोतरी का फैसला पहले ही वापस ले चुकी है। रूस ने इन प्रदर्शनों के पीछे हाथ होने के आरोप से इनकार किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव ने कहा, रूस मानता है कि ये पूरी तरह से फ्रांस का अंदरूनी मामला है। हम किसी देश के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देते और ना ही देंगे। हम फ्रांस के साथ संबंधों को भी आगे बढ़ाने को अहमियत देते हैं और इस दिशा में दोनों देश काम भी कर रहे हैं। हम फ्रांस की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। ये थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव के शब्द। 150 से ज्यादा देशों ने प्रवासन पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता कानूनी तौर पर बाध्यता वाला नहीं होगा। मोरक्को में हुई एक बैठक में ज्यादातर देशों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कम से कम 6 यूरोपीय संघ के देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस समझौते के लक्ष्यों में सरहदों का प्रबंधन और शरणार्थियों को बुनियादी सेवाएं मुहैया कराना शामिल है। आलोचकों का कहना है कि इससे प्रवासन को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि समझौता सहयोग और प्रवासन के नियमन पर आधारित है। उन्होंने कहा,
Unregulated migration bears a terrible human cost.
अनियमित प्रवासन से जबरदस्त मानव क्षति होती है। रेगिस्तान, समुद्र और नदियों के सफर में कई जानें चली जाती हैं। साल 2000 के बाद से सफर में 60,000 से ज्यादा शरणार्थियों की मौत हो चुकी है और ये सामूहिक शर्म की बात है। ये थे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटिश सरकार ब्रेग्जिट पर होने वाले एक अहम वोटिंग को मंगलवार तक स्थगित कर रही है। 3 अलग अलग सूत्रों ने बीबीसी के राजनीतिक संपादक को इसकी पुष्टि की है। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने आज संसद को संबोधित करते हुए कहा, उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया का ऐलान करेंगी। उधर यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की सहमति के बिना ब्रिटेन ब्रेग्जिट को रद्द कर सकता है। अदालत ने कहा कि कोई देश अपनी राय बदलने के लिए स्वतंत्र है जब तक वह समझौते को पूरी तरह लागू नहीं करता। बीबीसी समाचार।
सभी सुनने वालों को नमस्कार। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। साल के आखिरी महीने के तीसरे हफ्ते का पहला कामकाजी दिन यानी आज सोमवार का दिन खासा एक्शन पैक्ड यानी गहमा गहमी भरा रहा। सुबह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम ने मेजबानों को हराकर इतिहास रचा। इसके बाद भारत में राजनीतिक पिच पर एक्शन शुरू हुआ। मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा ने संभाला और एनडीए को झटका दे दिया। शाम होते होते खबर आई कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। इसके कुछ वक्त बाद ही खबर आई कि ब्रिटेन में लंदन की एक कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। माल्या के प्रत्यर्पण, कुशवाहा के इस्तीफे के बाद के राजनीतिक घटनाक्रम और मैच की खबर पर आगे बात करेंगे। शुरुआत करेंगे उर्जित पटेल के इस्तीफे की खबर से। उर्जित पटेल रघुराम राजन की विदाई के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। उनका कार्यकाल अगले साल सितंबर में पूरा होना था। बीते कुछ महीनों से रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की खबरें आम थी। हालांकि पटेल ने इस्तीफे की वजह निजी बताई है, लेकिन पूरे मामले से क्या संकेत सामने आ रहे हैं? मैंने अब से कुछ वक्त पहले ये सवाल किया पूरे मामले पर नजर रख रही बीबीसी संवाददाता देवीना गुप्ता से।
स्टेटमेंट को देखे उन्होंने ये कहा है कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूँ इफेक्टिव इमीडिएटली, मतलब अभी से ही मेरा इस्तीफा जो है वो स्वीकार करा जाए, क्योंकि उनका जो टर्म है वो 2019 में सितंबर में एंड होना था, पर अब ये 1990 के बाद पहली बार हो रहा है कि सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है वो अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही स्टेप डाउन कर रहे हैं। उर्जित पटेल जो 55 साल के हैं वो रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर हैं और वो वही गवर्नर है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंक को संभाला था, और उन्होंने काफी सख्त रुख अपनाया है गवर्नमेंट बैंक की तरफ और प्राइवेट बैंक की तरफ, जिनके अंदर खराब एसेट जिन्हें हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं और जो कर्ज जो कंपनियां वापस नहीं दे पा रही हैं जिसकी वजह से बैंक्स जो है वो चरमरा गए हैं, उनके खिलाफ काफी सख्त रुख अपनाया था और इसी के जद्दोजहद में सरकार से उनकी तनी हुई थी। और आरबीआई ने जब ये कहा कि बैंकों के ऊपर कर्जे देने पे कई प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो एनबीएफसी हो जाएं जो कि बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं या फिर पावर कंपनियां हैं जिनके खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया था सेंट्रल बैंक ने, उसको लेके सरकार ने कहा था कि आप जो है अभी थोड़ा पैसे जो है देने शुरू करिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जो कॉरपोरेट जगत के अंदर ये बहुत मुश्किल आ रही है उन्हें, और स्पेशली जब सरकार एक इलेक्शन की तरफ देख रही है उनके ऊपर भी काफी प्रेशर था, जिसके चलते सरकार ने एक सेक्शन 7 होता है, मैं आपको बताऊं इंडियन बैंक एक्ट जो 1934 में बनाया गया था, सबसे पहली बार पूरे बैंक के 83 इयर्स के हिस्ट्री के अंदर उसको निकाला था सरकार ने, जिसका मतलब यह है कि अब सरकार जो है वो बैंक को डायरेक्ट करेगी क्या करना है और कई मुद्दों पे वो अपने विचार जाहिर करेगी जो बैंक को मानने ही पड़ेंगे। और यही जो है तनाव है जो और खिंचा जब सरकार ने ये कहा कि रिजर्व बैंक के पास बहुत सारा पैसा है जिससे वो थोड़ा पैसा निकालना चाहेंगी। अब इलेक्शन के पहले ये पैसे निकालने का मतलब है जानकारों के हिसाब से कि सरकार काफी पब्लिक स्कीम लाना चाहती थी, और यही मुद्दा है जो आरबीआई और सरकार के बीच काफी दिनों से चल रहा था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, उर्जित पटेल ने दिसंबर 14 को एक मीटिंग होने वाली थी जहाँ पे सारे बैंकों को बुलाया गया था, उससे पहले ही पद छोड़ा है। और अभी आप अगर देखें तो काफी रिएक्शन आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करें उन्होंने उनकी प्रशंसा करी है उनके कार्यकाल की, पर उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया है, और यही अरुण जेटली ने भी कहा है कि वो काफी अच्छे अर्थशास्त्री हैं।
उर्जित पटेल ने अपने इस्तीफे के लिए निजी कारणों को जिम्मेदार बताया है, लेकिन क्या इससे रिजर्व बैंक की साख पर कोई असर पड़ता आप देख रही हैं?
अगर जो अभी रिएक्शन आ रहे हैं उनको देखा जाए तो काफी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। अभी तो विपक्ष ने ही सवाल उठाए हैं कि ऐसा क्यों है कि उर्जित पटेल जो मोदी सरकार ने ही चुना था उन्हें, पहले डिप्टी गवर्नर थे और मोदी सरकार ने ही उन्हें गवर्नर के पद पे नियुक्त करा था, वो अपने कार्यकाल खत्म करने से पहले क्यों अपना पद छोड़ा है उन्होंने। और ये भी कहा है ऑपोजिशन ने कि इसका मतलब ये है कि अब सरकार जो है वो रिजर्व बैंक चला रही है और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम बाहर के देशों में देखें जहां पे भारत की छवि ये एक उभरती इकोनॉमी है, अगर यहाँ पे इस तरह एक रिजर्व बैंक के गवर्नर का स्टेप डाउन करने का मतलब है, जो निवेशक है जिन्हें भारत से उम्मीद लगी हुई थी, अब वो उन्हें ये भी लग सकता है कि भारत के अंदर तंगी हो सकती है, अगर रिजर्व बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो आगे रुपए जो है और गिर सकता है, और इस तरह जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल गेन होगा पर इकोनॉमिक लॉस।
ये थी बीबीसी संवाददाता देविना गुप्ता। उर्जित पटेल के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आए bbchindi.com पर। अगली खबर। अब से कुछ घंटे पहले एक बड़ी खबर लंदन से आई। लंदन की एक कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण पर मंजूरी की मोहर लगा दी है। माल्या पर भारतीय बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, मैंने सवाल किया लंदन में मौजूद बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल से।
जज एमा आर्बुटनॉट जो इस केस की जज है, जैसे ही अंदर आई उन्होंने बोला कि मैं विजय माल्या को इंडिया एक्सडाइट करने वाली हूँ, और उन्होंने ये भी बोला कि अब मैं ये फाइल यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजूंगी, क्योंकि यूके में एक्सडिशन केस का जो ऑर्डर होता है नॉर्मली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साइन करते हैं, लेकिन विजय माल्या और उनकी टीम के पास 14 डेज का वक्त है अगर वो ये डिसीजन अपील करना चाहते हैं। अगर उन्होंने अपील करने के बारे में सोचा तो क्या होगा, फिर ये केस हाई कोर्ट जाएगा, अगर वहां पे भी इनको निराशा मिली तो इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर विजय माल्या और उनके लीगल टीम ने डिसाइड किया अपील नहीं करने का, तो 14 डेज के बाद मैजिस्ट्रेट जज माल्या का एक्सट्रेडिशन ऑर्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यूके के उनको भेजेंगे, और उनके पास 2 महीने का वक्त होगा इस ऑर्डर पे साइन करने के लिए, उसके बाद ही विजय माल्या इंडिया एक्सडाइट किए जाएंगे।
विजय माल्या मार्च 2016 से लंदन में है, लंबे वक्त से ये केस भी चल रहा था, ये मामला भी काफी लंबा चला है, तो कुल मिलाकर अभी जो उनके पास रास्ते हैं, जैसा आपने बताया उनके पास अपील का रास्ता है, तो कितना वक्त और माना जा सकता है कि वो लंदन में बिता सकते हैं, या भारत उनको कब तक लाया जा सकेगा?
क्योंकि अभी जज ने अनाउंस किया कि वो उनको एक्सडाइट करेंगे, उसका ये मतलब नहीं है कि विजय माल्या आज ही इंडिया आएंगे। अगर उन्होंने अपील किया और ये हाई कोर्ट गया, आपको पता है ना कोर्ट तो कितने बिजी होते हैं, तो इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 3 to 6 months, और अगर उन्होंने यू नो विजय माल्या को एक्सडाइट करने का भी हुक्म दिया, फिर उनके पास एक और ऑप्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, एंड अगेन वहां 3 to 6 months लगेंगे। तो लगभग रफली विजय माल्या विल नॉट बी एक्सडाइटेड टू इंडिया एनी टाइम बिफोर 1 year इफ ही गोज डाउन द अपील रूट।
फैसला आने के बाद क्या विजय माल्या की ओर से कोई रिएक्शन आया, उनकी कोई प्रतिक्रिया आपको मिली?
सुबह जब मैंने विजय माल्या और उनकी गर्लफ्रेंड पिंकी लालवानी को देखा तो दोनों बहुत स्ट्रेस लग रहे थे। यू नो विजय माल्या अपने नॉर्मल अंदाज में नहीं थे, और मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको ये हिंच था कि वर्डिक्ट उनकी अगेंस्ट होगा। यू नो जैसे ही जज ने अनाउंस किया तो पूरी पब्लिक गैलरी में वो शॉक था, और जब मैंने पिंकी लालवानी की तरफ देखा तो वो भी शॉक थी और उनकी आंखों में थोड़े आंसू भी थे।
लंदन से जानकारी दे रही थी गगन सबरवाल। एक वक्त विजय माल्या की गिनती भारतीय उद्योग जगत की सबसे चर्चित हस्तियों में होती थी, फिर उनके सामने संकट के बादल कैसे घिर गए, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता अमरेश द्विवेदी।
भारतीय उद्योगपति विजय माल्या अपनी शानो शौकत, चकाचौंध से भरी जिंदगी, तेज रफ्तार कारों और अपनी किंगफिशर एयरलाइन की शानदार उड़ानों के लिए मशहूर रहे हैं, पर माल्या की किंगफिशर विमान सेवा तब जमीन पर आ गई जब और उड़ानों के लिए बैंकों ने उन्हें कर्ज देने से इनकार कर दिया। भारत सरकार का कहना है कि माल्या भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रुपए के कर्जदार हैं, पर वो खुद को बेकसूर बताते हैं। माल्या साल 2016 के मार्च महीने में ब्रिटेन चले गए थे, इसके बाद भारत सरकार ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया और ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण की कोशिश में लग गई। ब्रिटेन में उनकी कानूनी जंग पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई। कोर्ट में माल्या के वकीलों ने दलील दी कि किंगफिशर एयरलाइन का कथित बैंक डिफॉल्ट एक व्यापारिक नाकामी का नतीजा था, न कि इसके मालिक की बेईमानी और फर्जेवाड़ी की गतिविधि का। अदालत को यह भी बताया गया कि माल्या ने 2016 में 80% मूलधन लौटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारतीय बैंकों के एक संघ ने इसे स्वीकार नहीं किया, जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि माल्या की नीयत लोन चुकाने की थी ही नहीं। हाल ही में इस मामले पर सफाई देते हुए उन्होंने ट्वीट किया, मैंने 1 रुपए का भी कर्ज नहीं लिया, कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया था। पैसे का नुकसान एक वास्तविक और दुखद व्यापारिक नाकामी की वजह से हुआ। गारंटर होना फर्जीवाड़ा नहीं है। 12 सितंबर को विजय माल्या ने लंदन में पत्रकारों से कहा कि 2016 में भारत छोड़ने से पहले उनकी वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात हुई थी। हालांकि वित्त मंत्री ने इस दावे को खारिज कर दिया था। भारत और ब्रिटेन ने 1992 में प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत किए थे, लेकिन इसके बाद से केवल एक ही व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जा सका है। इसके अलावा कुछ अन्य मामलों में अलग अलग वजहों से सफलता नहीं मिल पाई है।
रिपोर्ट सुना रहे थे बीबीसी संवाददाता अमरेश द्विवेदी। उधर संसद का शीत सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले केंद्र में सत्ताधारी एनडीए को झटका लगा है। केंद्र सरकार में बीजेपी के सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी एनडीए से अलग हो रही है। उन्होंने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया है। पूरी रिपोर्ट सुनिए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली से।
दिल्ली का राजनीतिक पारा आज दिन भर पूरी तरह से गर्म रहा। शुरुआत हुई संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से, और फिर बारी आई केंद्र में राज्य मंत्री रहे बिहार की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा की। पिछले 4.5 साल से मोदी सरकार में बने रहे उपेंद्र कुशवाहा हाल के दिनों में सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे थे, और आखिरकार आज दिल्ली में उन्होंने मोदी सरकार द्वारा आरएसएस के कथित एजेंडे को सरकारी संस्थाओं में बढ़ाने, ओबीसी और पिछड़ों के हितों के खिलाफ काम किए जाने और बीजेपी के नीतीश कुमार को तरजीह देने का आरोप लगाकर एनडीए गठबंधन छोड़ने की घोषणा कर दी।
इन तमाम चीजों को देखने के बाद अब मुझको लगता है आरएसएस का एजेंडा लागू कराने के लिए मुझको एक क्षण भी मंत्री परिषद में नहीं रहना चाहिए था, इसलिए मैंने इस्तीफा प्रधानमंत्री जी को अपना मंत्री परिषद से भेज दिया है। और दूसरी चीज, अभी से हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी।
कुशवाहा का जाना एनडीए के लिए धक्का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि बिहार में उनकी जाति के लोगों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में करीब 6-7 है। जहां इसे एनडीए की पिछड़ी जाति के वोटों के नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं कहा जा रहा है कि इससे महागठबंधन मजबूत होगा। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं, मगर कुशवाहा से जब दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि क्या वो उसी दोपहर हो रही महागठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, तो उनका जवाब था नहीं, वो वहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन साथ उन्होंने अपने सामने सभी विकल्पों के खुले होने की बात भी की। कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफे की घोषणा के पहले वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले थे। दिल्ली में शाम तक चली विपक्षी दलों की बैठक में मायावती की बीएसपी और समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस, एनसीपी, आंध्र प्रदेश की टीडीपी, तमिलनाडु की डीएमके, कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और जनता दल सेकुलर और दूसरे कई और राजनीतिक दल मौजूद रहे। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी कह रहे थे कि कमरे में इस बात को लेकर सहमति है कि रफाल, नोटबंदी और दूसरे मामलों में जिस तरह से बीजेपी भ्रष्टाचार फैलाती रही है, वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बीच इस बात को लेकर सहमति है कि हम बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मिलकर संघर्ष करते रहेंगे। हम इसी तरह का तालमेल भविष्य में संसद के बाहर और भीतर भी करेंगे। ये थे राहुल गांधी के शब्द। हालांकि बीएसपी और एसपी, खासतौर पर बीएसपी की बैठक में शामिल ना होना महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुबह सरकार के जरिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने रफाल लड़ाकू विमान सौदे में कथित घोटाला, सीबीआई और दूसरी संस्थाओं में मोदी सरकार की दखल अंदाजी जैसे मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस तरह की बैठकें हालांकि बहुत रूटीन हैं और हर सत्र के पहले सत्ताधारी दल के जरिए बुलाई जाती है ताकि सदन का काम सुचारू रूप से चल सके, लेकिन 2019 चुनाव के पहले यह इस सदन का आखिरी सत्र है। इसके बाद पूरक बजट के लिए संसद का एक और सत्र बुलाया जाएगा। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वो बीते कुछ समय से संकेत दे रहे थे कि वो एनडीए से अलग हो सकते हैं। ऐसे में उनका गठबंधन छोड़ना बीजेपी और एनडीए के लिए कितना बड़ा झटका है, मैंने ये सवाल किया वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जोशी से।
विंटर सेशन से ज्यादा टाइमिंग इम्पोर्टेंट ये है कि कल 5 असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल्स ये दिखा रहे हैं कि इसमें बीजेपी की हालत इतनी अच्छी नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा पिछले एक साल से डिथर कर रहे हैं। आप देखिए बिहार में क्या हो रहा है कि बीजेपी का जब से अलाइनमेंट, ये खास स्पेसिफिक एक बिहार के लिए है, बाकी जो अलायंसेस होंगी वो इस इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। अगर कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा तो रीजनल अलायंस कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होंगे, अगर बीजेपी का ज्यादा रहेगा तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की एक परिस्थिति ये है कि उनको ज्यादा सीटें बीजेपी दे नहीं रही थी बिहार में, और दूसरा ये कि बिहार की परिस्थिति ऐसी है कि लालू प्रसाद यादव जब से जेल गए हैं तब से एक वहां पे माहौल ऐसा बन रहा है कि ऑपोजिशन ने एक बैकवर्ड फॉरवर्ड टाइप का वहां पे माहौल बना दिया है, जिससे बीजेपी तो अपने पलड़े में रहेगी लेकिन जो बैकवर्ड नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जैसे, उनको लालू की जरूरत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने सोच समझ के फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ उनको ज्यादा भाव मिल नहीं रहा और दूसरी तरफ थोड़ा पलड़ा भारी उनको नजर आ रहा है।
इसका असर आप कोई राष्ट्रीय राजनीति पे भी देखते हैं?
देखिए साइकोलॉजिकली एक पॉलिटिक्स एक परसेप्शन की बात होती है। आज आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने रिजाइन किया है और उर्जित पटेल ने रिजाइन किया है। रेजिग्नेशन इज ऑल्सो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बीजेपी की तरफ से लोग ये कहेंगे कि रैट्स आर डिजर्टिंग अ शिप, एक ये मतलब निकाला जा सकता है। अब देखिए कल के चुनाव में क्या होता है उसमें ज्यादा अनुमान लगाने की बात नहीं है, कल आ ही रहे हैं रिजल्ट। लेकिन अगर बीजेपी इसमें ठीक करती है तो अलाइज उनके साथ रहेंगे, लेकिन अगर बीजेपी मान लीजिए मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट हार जाती है तो फिर आप और इस तरह के लोगों का पलायन देखेंगे बीजेपी के खेमे से।
ये थी पूर्णिमा जोशी। कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने हैं। ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। चुनाव नतीजों के अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं bbchindi.com के साथ। आज सोमवार है और आज आपको इंतजार होता है अपने पत्रों का, तो सुनिए आपकी राय।
आपकी राय, आपकी राय के साथ आज मैं हूं पंकज प्रियदर्शी और मेरा साथ दे रही हैं
सुमिरन प्रीत का।
बहुत बहुत शुक्रिया सुमिरन, बहुत दिन बाद आप आई हैं चिट्ठियों के कार्यक्रम में। ये बताइए बहुत सारी चिट्ठियां मैं देख रहा हूं, पहले शुरुआत में आपके हाथ में पोस्ट कार्ड है।
पत्र से ही शुरू करेंगे और तारीफ से शुरू करेंगे। पत्र लिखा है जोगाराम मेघवाल ने बाड़मेर राजस्थान से। ये कहते हैं कि अब बीबीसी पिछले कई महीनों की तुलना से संतुलित हो गया है, महिला जो प्रस्तुत करता है वो भी ज्यादा है और उनको भी अवसर दिया जा रहा है। सारिका जी को टेलीविजन के बाद अब रेडियो पर सुना, बहुत अच्छा लगा। और पाकिस्तान डायरी, दुनिया जहां, विवेचना पहले की तरह शानदार, लेकिन वाशिंगटन डायरी की कमी अभी भी।
मेघवाल साहब, आपने ये विस्तार से नहीं लिखा है कि आपको संतुलन में कमी किन क्षेत्रों में दिखाई दी, फिर भी आपने जो कार्यक्रमों की सराहना की है उससे हम अपने सिर माथे पर रखते हैं और साथ ही इसका भी ध्यान रखेंगे कि उसमें और सुधार हो सके। जहां तक वाशिंगटन डायरी की बात है उसमें कुछ समस्याएं हैं अभी, लेकिन जल्द ही हमारे संवाददाता वहां से भेजना शुरू करेंगे और उम्मीद है कि आप तक ये प्रोग्राम भी जरूर पहुँचेगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं
जी। और ये जो अगला पत्र है ना बड़ा खास है, ये पवन कुमार ने लिखा है जो 11वीं कक्षा में है पूर्वी चंपारण बिहार से। इन्होंने खत लिखा है और अब की नहीं एक साल पहले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कहा खास है। और एक साल पुरानी बात कर रहे हैं कि 31/12/2017 को शाम को नए साल के उपलक्ष्य में एक मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था जो उन्हें बहुत अच्छा लगा था और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। और राजेश जी द्वारा प्रस्तुत विवेचना जो थी वो भी उन्हें बहुत अच्छी लगी थी।
जहाँ तक मुझे लगता है विवेचना तो रेहान साहब ही पेश करते लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, वो कार्यक्रम काफी मनोरंजक था और इस बार भी उम्मीद रखिए कुछ अच्छा लेकर हम आपके लिए आएंगे, जरूर आएंगे।
चलिए अब ईमेल्स की ओर चलें और आलोचनाओं की ओर चलें। चलिए पहले तारीफ से शुरू कर लेते हैं। ये तारीफ जो है विवेचना की है और वीवीएस लक्ष्मण पर जो विवेचना रेहान जी ने प्रस्तुत की थी उसकी तारीफ की है एहसान असगर ने मलकापुर बुल्धाना से, उमेश कुमार डिब्रूगढ़ असम से और फारूक अब्दुल्ला फिजा रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार से। इन सब ने तारीफ की है और एहसान असगर कहते हैं कि ये जो विवेचना थी उन्होंने पुरानी यादों को जिंदा कर दिया। आज भी याद है कि भारतीय पहली पारी में सचिन के आउट होते ही इन्होंने टीवी ऑफ कर दिया था, रेडियो पर थोड़ी देर बाद स्कोर सुन लिया था। और जहाँ तक पॉडकास्ट की बात है तो वो पूछ रहे हैं कि क्या अब पॉडकास्ट नहीं है और क्या अब रिकॉर्ड करना संभव हो पाएगा ऐसे कार्यक्रम को।
जहाँ तक विवेचना की बात है तो विवेचना की काफ़ी लोगों ने सराहना की है और शायद ही कोई पत्रों का कार्यक्रम होता होगा सुमिरन जहाँ पे विवेचना की तारीफ ना आती हो, तो बड़ा ही घिसा पिटा सा जवाब भी हम लोग के पास होता है कि आपकी जो सराहना है और आपने जो प्रशंसा की है वो हम रेहान साहब तक ज़रूर पहुँचा देंगे। तो एक बार फिर हम ज़रूर पहुँचा देंगे। जहाँ तक पॉडकास्ट की बात है, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें चल रही है सुमिरन, और वो लंदन के एंड पे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम उसका जल्द ही कोई ना कोई समाधान निकाल पाएंगे, और जैसे ही इस दिशा में कोई प्रगति होती है हम आपको सूचित भी करेंगे।
जी, और अब सात समंदर पार चलते हैं। वैसे इतने समंदर नहीं है, लेकिन ये अगला जो लेटर है ये ऑस्ट्रेलिया से आया है। संजीव राजा ने लिखा है सिडनी से, जो कहते हैं कि मनोरंजन सेक्शन जो है, ये रेडियो की नहीं वेबसाइट की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं मनोरंजन सेक्शन जो है उसमें थोड़ी कमी हुई है आर्टिकल्स की, और जिस तरह की रिपोर्टिंग है उसमें और थोड़ी डेप्थ हो, क्योंकि बहुत ही सुपरफिशियल वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। अंग्रेज़ी में इन्होंने ये लिखा है और कहा है कि, लेकिन एक जो इनको आर्टिकल बहुत पसंद आया था वो था शशि कपूर पर, जो खास एक आर्टिकल आया था वो इन्हें बहुत पसंद आया था।
जहाँ तक मनोरंजन पर आर्टिकल्स की बात है, तो सुमिरन मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए इसका, क्योंकि आपकी उसकी जिम्मेदारी आपके पास है।
वर्क इन प्रोग्रेस, काम जारी है।
चलिए सुमिरन, बहुत पोलाइट हो रही है, मैं बता देता हूँ। हम कोशिश करते हैं, और जाहिर है मनोरंजन को भी एक तरह से देखा जाए तो मनोरंजन पर भी हम बहुत ही विस्तार से जो आर्टिकल होते हैं उन पर हम लोग का ज़्यादा ध्यान होता है, तो इस कारण कई बार देर भी होती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जब आर्टिकल आएगा उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हमने उस पर काफ़ी मेहनत की है। तो कई बार इस कारण भी देरी होती है, और कई बार घिसी पिटी कहानियाँ भी बहुत होती हैं, तो हम लोग उसको करने के बजाय छोड़ना बेहतर समझते हैं।
भेड़ चाल में चलने से अच्छा है कि
इंतजार करके रिसर्च करके एक अच्छा सा लेख आपके सामने लाया जाए। और सुमिरन, मुझे लगता है अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो चलते चलते पता बताते
प्लीज आप बताइए।
बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110001। और अगर ईमेल से पत्र लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब बात एडिलेड टेस्ट में भारतीय टीम को मिली जीत की, सुनिए मैच रिपोर्ट।
एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 31 रन से हरा दिया। खेल के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के सारे बल्लेबाज 291 रन पर ही आउट हो गए। इससे पहले भारत ने एडिलेड ओवल में 2003 में टेस्ट मैच जीता था। चार टेस्ट मैच की इस श्रृंखला में पहले टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद भारत ने कहीं न कहीं इतिहास भी रचा है। मैन ऑफ द मैच रहे चेतेश्वर पुजारा। जीत के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा,
Obviously it's a great feeling. We've never taken lead in a series in Australia, so something that for us is a huge boost.
हमें अच्छा लग रहा है, ऐसे हमने किसी टेस्ट सीरीज में लीड नहीं ली जहां तक ऑस्ट्रेलिया में खेलने की बात है। हमने मेहनत की है। कोई भी टेस्ट मैच में जीत अच्छी होती है, क्योंकि आप 5 दिन मेहनत करते हो, क्योंकि ऐसा पहले नहीं हुआ है तो और अच्छा लगता है।
Good achievement on the team's part and something that we really looking forward to build on.
मैच के चौथे दिन भारत ने 307 रन बनाए थे। भारत को पहली पारी में 15 रनों की बढ़त मिली थी, और इस आधार पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 323 रन का टारगेट मिला था। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने खेल खत्म होने तक 4 विकेट चटका दिए थे, और दिन खत्म होते होते स्कोर था 104 रन। पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया ने खेलना शुरू किया तो मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और बुमराह ने टीम के अहम विकेट ले लिए। इस जीत पर वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली का कहना है,
जो जिनको 5 दिन का खेल अच्छा लगता है उनको बहुत इसमें क्षण ऐसे थे जिसमें कभी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी, कभी भारत का पलड़ा भारी, और आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने इतनी बढ़िया शुरुआत की थी और वहां से उन्होंने मैच हारा है, तो इसका मतलब आपको श्रेय भारतीय टीम को देना पड़ेगा, जिसमें खास करके चेतेश्वर पुजारा।
तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगला टेस्ट मैच शुरू होगा 14 दिसंबर से पर्थ में, उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में, और चौथा और इस श्रृंखला का आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में, जो शुरू होगा 3 जनवरी 2019 से।
और चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। उर्जित पटेल ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताए हैं। भारतीय कारोबारी विजय माल्या का प्रत्यर्पण ब्रिटेन के एक कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जापान में अभियोजकों ने निसान कंपनी के चेयरमैन कार्लोस गॉन के खिलाफ एक नए आरोप तय किया है। जिसके चलते उन्हें इस महीने के आखिर तक हिरासत में रहना होगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे कपिल देव सिंह। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।